तो प्यारे बंधुओं व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आज एक हमारे आचार्य शिला वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव है। आज के दिन व्यास अवतार चैतन्य लीला में शिला वृंदावन दास ठाकुर प्रकट हुए थे। जब कोई आचार्य प्रकट होते हैं, प्रकट अप्रकट होते रहते हैं, प्रकट भी हुए थे, अभी अप्रकट भी हैं, चले भी गए हैं, उनकी स्मृति में ये भजन गाया जाता है। तो आप सब लोग बोल ले, मेरे प्यारे बंधुओं व माताओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, कृपा करके इस बात का ध्यान रखो कि जीवन का उद्देश्य जो है अपनी शुद्धि करना है। प्रभुपाद कहते थे शुद्धि न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। हमारी सत्ता कैसे शुद्ध होगी, हमारा शुद्धिकरण कैसे होगा, ये बताया है जो पूर्ववर्ती आचार्य हुए, जो वैष्णव हुए, उनका संग करके, वैसे आचार्यों का वैष्णवों का संग करके। तो एक प्रश्न उठता है, भाई कलिकाल में तो वैष्णवों का बड़ा अभाव है, हैं? पर अभाव है, कम है, कैसे उनका संग हमको प्राप्त हो। जो पूर्व काल में वैष्णव हुए उनके जीवन की चर्चा करके हम उनका संग करते हैं। याद रखो, भक्तों का संग करना है। महाप्रभु जो कली पावन अवतार हैं, जो हमें शिक्षा देने के लिए आए हैं, महाप्रभु कहते हैं साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, साधुओं का संग, तीन बार कहा। और थोड़े से साधु संग से सब सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तो सबसे बड़ी सिद्धि क्या है कि जीव भक्त बन सकता है, बिना भक्ति के तो कोई रास्ता और नहीं है, सबसे बड़ी सिद्धि। ऐसे कहा ना कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, सके ले रही अशांत, भोगों को चाहने वाले, मुक्ति के चाहने वाले ज्ञान मार्गी सिद्ध हैं, अनिमा लगिमा प्राप्ति, कई प्रकार की सिद्धि है, ये सब अशांत हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सके ले रही अशांत, सब अशांत हैं। कृष्ण भक्त निष्काम, जो कृष्ण भक्त है उनके मनों में कोई कामना नहीं है, एता एव शांत, वो शांत है। तो सबसे बड़ी सिद्धि के भक्त के लाभ हो सकता है। तो वो वही महाप्रभु ने कहा है, आज शिला वृंदावन दास ठाकुर आज के दिन प्रकट हुए। वैसे वैष्णवों के बारे में प्रभुपाद बात सुनाते हैं कि मोरोबा जीवोबा, वैष्णव अगर जिंदा है, जब शरीर छोड़ दिया, अगर जिंदा है तो प्रचार कर रहे हैं, अगर शरीर छोड़ दिया है तो भगवान के साथ लीला में है। अभी जैसे संसार का कोई मर जाए तो लोग रोते हैं, वैसे रोना नहीं चाहिए पर रोना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि मोह माया में जकड़ा हुआ बेचारा गया, नर्क में सड़ेगा, ऐसे रोने की बात है, खुश होने की बात तो है नहीं। पर भक्तों के लिए रोया नहीं जाता। अंग्रेजी में कहावत है ए सेलिब्रेशन इन सेपरेशन, जुदाई में उत्सव मनाया जाता है। रोने वाली बात ही कोई नहीं, क्यों? जब तक भक्त थे तो प्रचार कर रहे थे, लोगों को भक्ति में लगा रहे थे। अभी जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो वैकुंठ लोग को गौलोक धाम को चले गए, अफसोस, रोने की बात क्या। हाँ, संसारी लोगों के लिए रोना चाहिए, क्योंकि जब जिंदा थे बेचारे तब भी रोना चाहिए उनके लिए, क्योंकि उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। अब मर के ज्यादा रोना चाहिए, नरकों में सड़ेंगे बेचारे वो, और उनकी दुर्गति हो जाएगी, वहां पर यमदंड चलेगा, यमदूत मार मार कर, मार मार कर, मार मार कर, इतना मारेंगे उसको, उनको इतना यमदूत मारेंगे कि उनकी हड्डी पसली एक कर देंगे, वो रोने की बात है। तो वैसे वैष्णवों की स्मृति में भी कई बार आंसू आते हैं, वो जो वैष्णवों की स्मृति में आंसू आते हैं वो याद रखो वो ठंडे होते हैं। क्या होते हैं? किसी को अनुभव है ठंडे आंसुओं का? किसी को नहीं है? सर्दियों में हम गर्मियों की बात कर रहे हैं। आंसू जब वैष्णवों की स्मृति में आते हैं, चाहे गर्मियों में है चाहे सर्दियों में, वो ठंडे होते हैं। और अगर आंसू दुखियों के जो आदमी रोता है वो जो आते हैं चाहे सर्दियों या गर्मियों हो, वो गर्म होते हैं, सर्दियों में गर्म होंगे वो। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर जो हैं वे व्यासावतार हैं, व्यासदेव के अवतार हैं। जैसे भगवान वेद व्यास ने सारे ग्रंथ लिखे, भागवत महापुराण अंत में लिखा है, चार वेद, 18 पुराण, उपनिषद, 108 उपनिषद, इन्होंने इस सब ग्रंथों की रचना की। लेकिन देखो जब भगवान आते हैं पृथ्वी पर तो भगवान अकेले नहीं आते, अपने पार्षदों के साथ आते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर व्यास भगवान हैं, वो भी महाप्रभु की लीलाओं में प्रकट हुए थे। और वृंदावन दास ठाकुर जो थे, नारायणी देवी जो थी उनके सपुत्र थे, नारायणी माता के। नारायणी जब 5 वर्ष की थी, गौर भगवान ने उनको प्रेमावती का दान दिया था। नारायणी 5 वर्ष की जब बालिका माता वो थी, वही तो फिर वृंदावन दास ठाकुर की माता बनी। तो गौर हरि के साथ वृंदावन दास ठाकुर आए, इन्होंने चैतन्य भागवत लिखा। चैतन्य भागवत में भी भगवान की, गौर भगवान की लीलाएं हैं, लेकिन बहुत सारी लीलाएं रह गई थी। तो राधा मदन मोहन ने शिला कृष्णदास कविराज महाराज को कहा, सौंपन दिया, कविराज चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी लीलाएं रह गई हैं जो वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन नहीं की हैं, तुम उनका वर्णन करो। तो शिला वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, मेरी अभी 80 पता नहीं 85 साल उम्र थी, मुझे आंखों से देखता भी कुछ नहीं, मैं बड़ा वृद्ध हो गया हूँ, कैसे मैं भगवान की लीलाओं का गुणगान करूंगा? अच्छा, भगवान का आदेश तो उन्हीं की कृपा से करूंगा। बड़ा सुंदर उन्होंने फिर चैतन्य चरितामृत लिखा। याद रखो ये कहा है कविराज गोस्वामी महाराज ने कहा है, चैतन्य राधया कथा करीला विचार, विचार करी चिते पावे चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु की दया और कथा का विचार करो, ये बड़े दयालु ठाकुर हैं, विचार करने से चमत्कार होगा। क्या चमत्कार होगा? अंदर सोया होगा कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु की दया का चमत्कार, भगवान दक्षिण भारत की यात्रा में थे, वो उद्धार करने के लिए लोगों को ढूंढते रहते थे, क्योंकि एक राधा भाव में कृष्ण आए हैं, भक्ति भाव में भगवान आए हैं। तो उन्होंने दया का जो खजाना है कलयुग के जीवों के लिए खोल दिया है। तो भगवान जा रहे हैं तो एक तालाब पर एक धोबी कपड़े धो रहा है। आपको पता कपड़े कैसे धोए जाते हैं? यहां पर पटकते हैं ना जमीन पर कपड़ों को। तो गौर हरि आए, उसको कहा, भैया हरि बोल। तो धोबी नहीं बोलता, भगवान कहते हैं हरि बोल। धोबी कहता, बाबा मेरे पास तेरे को देने लेने के लिए कुछ नहीं है। भगवान कहते, देना लेना भैया कुछ नहीं है, तू हरि बोल। कहते, बाबा तेरे पास तो कोई काम है नहीं, मेरे कच्चे बच्चे हैं, मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कपड़े धोता हूँ, मैं उनका पालन करता हूँ, बाबा तू जा। देखो गौर भगवान कितने दयालु हैं, उनकी दया और कथा। तो गौर हरि कहते हैं, अच्छा भैया तो दोनों काम इकट्ठे नहीं कर सकता, ले तेरे कपड़े मैं धो देता हूं। गौर भगवान ने उससे लिया कपड़ा, जब देखा दर्शन किए उसने ठाकुर जी के, तो गदगद हो गया धोबी का बच्चा। धोबी का बच्चा था मन कच्चा, वो गदगद हो गया भगवान के दर्शन करते, और भगवान लगे पटकने उसको कपड़े को। तो धोबी कहता बाबा बोलो क्या बोलना है। देखो भाई इतना दयालु बाबा, ये खुद ही धोने लगा मेरे कपड़े। भगवान कहते हैं भैया बोलो हरी बोल। धोबी कहता हरी बोल। भगवान कहते हैं हरी बोल। धोबी का बच्चा कहता हरी बोल। दो चार बार जब हरी बोल का उच्चारण धोबी से करवाया, बस हरी बोल का इंजेक्शन लग गया धोबी को। अभी धोबी क्या हरी बोल हरी बोल। अभी महाप्रभु ने क्या किया, और कपड़े छोड़ दिए थी और एक टीले पर चढ़ के तमाशा देखने लगे। जैसे आप कोई उसमें एक चाबी भर दो ना किसी खिलौने में, चाबी भर के छोड़ दो नाश्ता खिलौना है, ऐसे भगवान ने वो हरि नाम की चाबी भर दी उसको नाश्ते भर। इतनी देर में उसकी पत्नी लेके आ गई भोजन, वो भूल गया था बस हरी बोली कर रहा नाच रहा है। जब पत्नी आई तो नाच रहा है, कहती है ये नाचना कब से सीखे, उसने कभी देखा ही नहीं था अपने पति को नाचते, वो नाच रहा है। लेकिन उसको होश ही नहीं, उसको ऐसा हरी बोल का इंजेक्शन लगा हुआ है, भावुक हो गया। धोबन घबराई, कहते नहीं इसको कोई भूत का प्रवेश हो गया है। यही गांव के लोगों को ले आई, और वो गांव के लोग आ गए, चलो मेरे पति को कुछ हो गया। तो गांव के लोग आ गए, आए जाओ तो वो अपना नाच रहा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। गौर की कृपा, गौर कृपा। देर में जो आए लोग उनमें से एक मुखिया था, उसको उसको पकड़ के कहा बंद कर दी हरी बोल। जैसे उसने को ऐसे किया तो वो भी हरी बोल, हरी बोल। वो भी हरी बोल करने लग पड़ा। जिसने एक दूसरे को स्पर्श किया सभी हरी बोल करने लग पड़े। तो ये है गौर भगवान की दया। गौर हरी बड़े दयालु हैं, उनका बड़ा दिव्य वर्णन शिला वृंदावन दास ठाकुर ने उनकी लीलाओं का किया है। तो कविराज गोस्वामी जो भक्त हैं, उन्होंने कहा है कि चेतन ने रा दया कथा करीला विचार, विचार करी चिते पावे चमत्कार। देखो गौर हरी ऐसे हैं, वन्य प्राणी जंगल के पशुओं को उन्होंने भक्ति दे दी, हम तो मनुष्य हैं। बोलो है या नहीं है, बोलता ही कोई क्या है ये सब पंजाबी पागल है। अच्छा जीवात्माएं, कहां की जीवात्माएं है ये, और रुक्मिणी के जवाब है जीवात्मा ऐसे देता कि जैसे मुझे पता ही नहीं था। जवाब रुक्मिणी कृष्ण मान गया तेरे को। रुक्मिणी कृष्ण सोचे एक नया लेक्चर करने वाला आया यहाँ, जीवात्मा में शक्ल देखने वाली थी इसके सामने। देखो हम मनुष्य के शरीर में हैं, और महाप्रभु की इतनी दया है, उनकी कृपा से पशु पक्षी भी भक्त बन गए। पशु पक्षियों के शरीर में भी जीवात्मा है, ये कोई खास जीवात्मा है या अभी नहीं बोलेगा कुछ बेचारा, अभी नहीं बोलेगा ये बोलेगा नहीं, मैं पूछूंगा तेरे को, तू ही बोला था पहले। तो चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगल से जा रहे थे, उनके बुखार में से सदा कीर्तन होता था। एक दो लाइन उनके कीर्तन की सुनाता हूं। गाए गौरा मधुर स्वरे, गाए गौरा गाए गौरा मधुर स्वरे, गाए गौरा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम Hare Krishna.
Hare Hare Gauranga.
Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare.
Gaye Gaura Madhur Sware. Gaye
Gaura
Jivan La Hoi Lo She Namalila Rishi ke Jivanala Oil Namalila Bhakti Vino Dopade Ekavara Namarate Matare Bhakti Vino Gaye Gaura Madhur Sware Gaye Gaura Grihe Thaka Banne Thaka Sada Hari Valedaka Grihetaka Sukhe Dukhe Bhulo Daka Badne Gari Naam Karre Badane Arina Gaye Gaura Madhur Sware Maya Jale Bande Maye Achomite Kadla Maya Jale Bande Ekana Chaitanya Pai Radha Madhav Nalvalare Gaye Gaura Madhur Sware Gaye Gaura
तो गौर भगवान सदा मधुर स्वर में कीर्तन करते थे. वो कलयुग में हम लोगों का कैसे उद्धार हो सकता है वो भगवान सिखाने आए हैं. प्यारे बंधुओं, वो माताओं, जब झारखंड के जंगल से, यहां कोई झारखंड का है नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई नहीं है, जो मुंह छुपा रहा है अपना वही ये तो मुझे पंजाबी लगता है. झारखंड पीछे पीछे है तो प्यारे बंधुओं, माताओं, झारखंड के जंगल से गौर भगवान जा रहे हैं. उनके सेवक बलभद्र भट्टाचार्य उनके साथ थे. तो झारखंड में बड़े वन्य प्राणी हैं, वाघ हैं, हिरण हैं, हाथी हैं, मोर हैं, बंदर हैं, सांप, ये कुछ जंगली जानवर. तो वो सारे जंगली जानवर जो हैं, जब गौर भगवान के मुखारविंद से नाम ध्वनि सुन रहे हैं, वो सभी नृत्य करने लग पड़े, कीर्तन करने लग पड़े. पिछली टांगों पर खड़े होकर वन्य प्राणी कीर्तन करने लगे. वाघ हिरण को गले लगा रहा है. अरे वाघ तो हिरण को कभी गले नहीं लगाता,
लेकिन नाम सिमरन करने से गौर कृपा से अंदर की मलिनता समाप्त हो गई, पवित्र हो गए, आपसी शत्रु वो भूल गए, शत्रुता भूल गए, बाघ हिरन को गले लगा रहा है, सब नृत्य कर रहे हैं। लेकिन एक बाघ टाइगर कोई मेरे जैसा होगा बेचारा मंदबुद्धि, वो नहीं उठा, वो बैठा रहा। लेकिन गौर हरि अपनी भावना में धूम में कीर्तन करते जा रहे हैं, आगे वो बैठा हुआ है बाघ। बाघ जो है बड़ा पापी जीव है। जब बाघ के पूर्वज की रचना हुई थी उसने कहा था भगवान को कि मेरा वंश तो बड़ा पापी होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। बाघ के पूर्वज ने कहा तो भगवान ने कहा भाई तेरा जो चमड़ा है ना उस पर साधु संत बैठा करेंगे। टाइगर स्किन पर लोग बैठते हैं ना, संत बैठते हैं, और जहां टाइगर स्किन है वहां पर रेप्टाइल कीड़े मकोड़े भी पास में आते हैं उसके। तो बाघ कई बार पशुओं को मार के छोड़ देता है, दूसरे पशु खाते हैं। शेर शिकार तब करता है जब उसको भूख लगी। वो बाघ बैठा है जब भगवान जा रहे हैं, मेरे जैसा मंदबुद्धि बाघ, बाकी सब कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, भगवान जा अब जा रहे हैं तो पीछे से बलभद्र भट्टाचार्य चिल्लाए, महाप्रभु बाघ बाघ अब क्या के बाघ है। पर महाप्रभु को कहां होश थी, महाप्रभु जा टकराए बाघ के साथ, टकराए जब तो महाप्रभु को जब स्पर्श हुआ, बाघ ने भगवान को देखा, पिछली ठांकों पर खड़ा होकर वो भी करने लग पड़ा हरि बोल। ये हमारे महाप्रभु की कृपा। तो महाप्रभु की कृपा से पशु पक्षियों का उद्धार हो गया, हम सबका हो सकता है। पर अगर हम करवाना चाहें तो, अगर हम अपना उद्धार नहीं करवाना चाहें तो फिर महाप्रभु हमारा उद्धार नहीं कर सकते। हमने मन को बनाना है, ये सब घटनाएं महाप्रभु के जीवन के देखते हुए मन को बनाना है कि जरूर मेरा भी उद्धार होगा। महाप्रभु की कृपा से जो कली पावना अवतार हैं, जो बड़े दयालु हैं, उनकी कृपा से निश्चित रूप से मुझे भी भगवान मिलेंगे। लेकिन मन हमारा इतना बेकार है, मन कहते कहाँ होगा यार उद्धार, कितने होना साडा कल्याण, असि इतनी भौंदे रहना, बस असी आवागमन के चक्कर च पिया रहना, साड़ी कितने। मन इतना गंदा है, मन बड़ा बेकार है। लेकिन भक्ति सामर सिंधु में शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त को आशावंद होना चाहिए। आशावंद का अर्थ है कि निश्चित रूप से मुझे भगवान मिलेंगे, आज के बाद आप सब ये मन बना लो कि जरूर मुझे भगवान मिलेंगे। बोलो बनाओगे या नहीं, सारे नहीं बोल रहे, कुछ बोल रहे, बनाओगे या नहीं, जो जो नहीं बनाएंगे वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो जो मन बनाएंगे क्या हमें जरूर भगवान मिलेंगे, वो हाथ खड़ा करो। और मन बना लो, ईश्वर रूप गोस्वामी सबसे बड़े चारे हमारे वो कह रही है। तो मन बना होगा जरूर भगवान मिलेंगे। और फिर वैसे कार्य करने, हमने ये नहीं के बगल में शुरी और मुंह में राम राम, ऐसा भी काम नहीं चलेगा। केवल कलयुग में नाटक बड़े हैं ना, नौटंकी बड़े आ जाते हैं, बड़े नाटक करने वाले। जैसे वाराणसी में एक बड़ी फिल्म बनी थी, वो वाराणसी में कोई नौटंकी थे, लूटते थे साधु देश में, एक फिल्म बनी थी बड़ी फेमस फिल्म थी, किसी याद है किसी को? फिल्म मैंने भी देखी थी। तो कोई उसमें कोई यात्री आए वाराणसी में, उन व्यवहार देखा तो कहता वाह कितना कितना दिव्य व्यवहार है। और बाद उनको कत्ल करके, उन जो नौटंकियों ने कत्ल करके सारा सोना चांदी सब लूट लिया और उनको फेंक दिया। तो नाटक कितना है, अगला कहता है वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काम कैसा है, काम अगले को मार दिया। कलयुग में नौटंकी बड़ी है, यात्रा को नौटंकी से भगवान नहीं मिलते। भगवान कैसे मिलते हैं, बड़े भोले भाव से। एक मुझे कथा सुनानी पड़ेगी वर्तमान से, आपको सुना दूं। एक भक्त थे, उनको घर वालों ने घर से निकाल दिया. क्यों निकाल दिया? वो 2.5 शेर अन्न रोज खाते थे. 2.5 किलो, मैं 2.5 किलो से ज्यादा, कोई 3 किलो, 3.5-4 किलो अन्न रोज खाना. उनकी भेंट हुई समर्थ गुरु रामदास जी, जो शिवा जी के गुरु थे. तो भेंट हुई तो उन्होंने कहा तो काम करेगा? कहते महाराजा मैं करूंगा तो जरूर. कहते मेरी एक समस्या है. कहते क्या? कहते मैं 2.5 शेर अन्न रोज खाता हूं. मैं खाता हूं, मुझे घर वालों ने घर से निकाल दिया है. समर्थ गुरु रामदास जी बड़े पहुंचे हुए संत थे. उन्होंने कोई बात, तुम्हें 2.5 शेर रोज मिल जाएगा, तुम आओ. तो उनको सेवा दी गाय चराने की. तो गाय चराने के लिए ले जाते थे. अब जैसे कल एकादशी आ गई, रामदास जी कहते हैं देखो रामा, ऐसा है कि आज तुम वहीं भोग लगा लेना जंगल में ही. देखो ना, भोग लगा के खाना भगवान को. वो भोला रामा बेचारा भोला वाला, 2.5 रन खाने वाला, कोई जानता नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ नहीं जानता था वो. उसने जो भी वहां तैयार किया और बोला आओ भगवान भोग लगाओ. राम जी आ गए. देखो कुछ ज्ञान है, सत्य कथा है, दंत कथा नहीं है, ये भक्त मानसिक कथा है. आगे आगे तो भगवान पाने लगे. देखो भगवान कैसे मिलते हैं, भोले भाव से भगवान मिलते हैं. पाने लगे तो रामा कहता है प्रभु ये तो मेरे लिए खाली था, अब नया आधा खाली है, मेरे लिए कुछ छोड़ दो. भगवान ने छोड़ दिया. तो अगले बार फिर एकादशी आ गई. उन्होंने कहा कि देखो भाई अभी हम खाने वाले 2 हैं उधर, और भगवान को भी खाना होता है, तो मुझे भी अभी डबल देना. जो वो कोठारी का क्या था, जो भी क्या कहते कोठारी कहते हैं उनको, क्या भंडारी या कोठारी, वो भंडारी जो था, कहते ए रामा ऐसे ही बहाने बनाता, खुद खाना है इसको. लेकिन राम गुरु रामदास जी ने कहा दे दो उसको 5 सर अन्न दे दो रामा. उन्हें फिर बनाया भोग बनाया और भगवान को भोग लगाया. भगवान आ गए. अभी सीता जी को भी साथ लिया है. सीता जी को भोग लगा तो फिर कम पड़ गया, कम पड़ गया. खाने लगे दोनों भगवान, सीताराम आरोगने लगे. कहते सारा नहीं मुझे भोग लगी है, मैं भी 2.5 शेर खाता हूँ, चलो थोड़े से काम चलाऊंगा, मुश्किल है बड़ा बड़ा मुश्किल है. अगली बार तो फिर जब एकादशी आई, कहा देखो ऐसा है अभी बढ़ गई है संख्या, बढ़ गई है अभी और बढ़ाओ. उन्होंने 2.5 शेर और बढ़ा दिया. अगली बार रात कांचे के दिन सब बनाया, भोग लगाया, आए भगवान लक्ष्मण जी को साथ लिया. अभी सीता राम और लक्ष्मण जी ने पाया साथ. अगर बोले भी ये बढ़ाओ ये थोड़ा है, अगली बार बढ़ाया तो फिर शत्रुघ्न जी आ गए साथ में, फिर भरत जी आ गए, सारे चारों भाई इकट्ठे हो गए. और जो भंडारी कहे कि इसने खाने का खुद खाता है, नाम इसका भगवान का है, आखिर रामदास जी ने कहा समर्थ गुरु जी ने इसको देते जाओ जो कहता है. आखिर फिर 5वीं बार हनुमान जी भी आ गए. लगा सब बनने, रोज भगवान पाते थे. अभी देखो ना वो कोई जप करता था ना कुछ था, लेकिन भोला वाला था. है कहा है भगवान भोलेपन से शुद्ध हृदय से मिलते हैं. अभी राम गुरु रामदास जी को कहीं जाना पड़ा, उन्होंने वहां के लोगों की ड्यूटी लगाई भाई ये सीधा है, इसका तुम रामा का ध्यान रखना. रामा जब आरती करता सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, आरती बुझ भी जाती, वो आरती कर भावुक हो जाता था, वो आरती करता रहता. लोग कहीं ऐसे पागल है ये, लोग क्या समझे. देखो कहा है ना हीरे की गति जोहरी जाने की जो जोहर होए. हीरे को तो जोहरी पहचानेगा ना. जो जैसे मीरा जी ने कहा ना कि मीरा की प्रभु पीर मटे जब वैद्य सांव लिया होए. हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द ना जाने कोई. आम लोग जो प्रेम जिनके हृदय में नहीं है वो क्या भक्तों के दर्द को जानेंगे. तो आखिर लोगों ने आना ही छोड़ दिया, आना छोड़ दिया। तो अभी जब भोजन का समय आता, पूरा राम दरबार आ जाता, सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी सब आ जाते। अभी रामा एक दिन कहता, देखो जी ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं अकेला थक जाता हूं, भोजन सीता माता बनाएंगी और हनुमान जी लकड़ियां जुटा के लाएंगे, लक्ष्मण जी को कुछ और काम दे दिया, भरत शत्रु सबको काम दे दिया। राम जी कहते हैं, रामा भाई मेरा क्या काम है प्रभु, बस आप सिंहासन पर विराज कर सबको आशीर्वाद दो, बस राम जी को काम नहीं दिया। बस रोज पंगत होती, लक्ष्मी अपना सीता माता बनाती हैं, परोसती हैं सब। राम अपना समर्थ गुरु रामदास जी आए, जब वो वापस आए लोगों को पूछा, लोगों ने रिपोर्ट ठीक नहीं दी, कहते तो पागल है, हम जाते नहीं मंदिर में, उधर रस्त पानी उसको दे देते हैं, वो ऐसे ही आरती करता, तो पागल होते राम, आरती बुझ भी जाती फिर भी आरती करता रहता, लोग क्या जाने उसको। और वो मंदिर का दरवाजा बंद कर लेता है। रामदास जी जब आए, वही पहुंचे हुए संत थे, वो गेट बंद है मंदिर का, उन्होंने देखा तो अंदर क्या सारी पंगत बैठी है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सारे खा रहे हैं, लेकिन डिस्टर्ब नहीं किया। आके सब ने खाई तो पतले अभी उठा करके रामा जो है बाहर फेंकने आया, आया तो उसने दरवाजा खोला, देखा गुरु जी चरणों में गिर गया। तो गुरु जी ने गले लगा लिए, बेटा तुम बड़ा महान है, मैं भारी पहुंच गया, यहाँ तू पहुंच गया, सर राम दरबार आता है तेरे भोजन करने के लिए, तो धन्य है। तो भगवान मिलेंगे जब हमारा हृदय निर्मल होगा। एक बड़े सुंदर शब्द कहे हैं राम जी, कह रहे हैं निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट। राम जी कहते हैं जिसका मन निर्मल है, जो भोला वाला है वही मुझे पा सकता है, जिसके मन में छल कपट छिद्र है मुझे वो अच्छा नहीं लगता। हम अपने अंदर झांक के देखें मेरे अंदर कितना छल कपट है, फिर कैसे मुझे भगवान मिलेंगे। भगवान तो तभी मिलेंगे जब मेरे अंदर से छल कपट छिद्र दूर हो। कपटी को कभी भगवान नहीं मिल सकते। कपटी कौन है? कपटी की भाषा बताई है, बाहर और भीतर और बाहर और भीतर, जैसे बगुला भे जैसे बगुला भे, ऐसे व्यक्ति से कौआ भला, ऐसे व्यक्ति से कौआ, जो बाहर भीतर एक, जो बाहर आदमी बाहर और ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है, जैसे बगुला भेष। बगुला जो है ना, बगला भेष क्या है? बगला एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करता है। क्या तपस्या उसकी? वो देख रहा है अगर मछली जब ऊपर आई ना छुट जाके उसको पकड़ना है। बगले की तपस्या क्या है? मछली को खाने के लिए। जो दिख रहा है वो तपस्या नहीं है, मछली को खाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। बाहर और भीतर और, जैसे बगुला भेष, ऐसे व्यक्ति से कौआ भला, जो बाहर भीतर एक। तो प्यारे बंधुओं माताओं, अंदर बाहर से एक बनना हमने, ये प्रभुपाद की शिक्षा है। कपट अंदर कपट ऊपर से मिठास, ये बड़ा घातक है। ऐसा करना प्रभुपाद जी लिख रहे हैं चैतन्य चरितामृत में पशु मारने के समान है। पशुओं को मारने वाला कभी भगवान को नहीं पा सकता। जो पशुओं की हिंसा करता है, जो पशुओं को मारता है, वो ये सोचे मुझे भगवान मिल जाए, ये कभी नहीं हो सकता। अंदर बाहर से एक होना, ये सीखनी है ना बातें। अपने अंदर देखना कि मैं अंदर कितना गंदा रखता हूं, ऊपर से मैं कितना नाटक करता हूं, वो ठीक नहीं। एक बार अंग्रेजों का टाइम था, तो एक अंग्रेज का बच्चा, राज भारत में अंग्रेजों का था, वो अंग्रेज का बच्चा जो है घूमता घूमता, अंग्रेजों को घूमने की बड़ी बीमारी होती है, गांव में चला गया तो अंग्रेजों को एक और बीमारी होती है चाय पीने की, हमको भी चाय अंग्रेजों ने ही सिखाई। तो गांव में गया तो उसको चाय की आदत थी, गांव एक घर में गया, भोली वाली स्त्री थी, उसे कहता है, वो तो जानती नहीं थी हिंदी, अंग्रेजी जानती नहीं थी, कोई हिंदी जानती थी, उसको कहता कपटी, मतलब एक कप चाय ना तेरी यानी उन्होंने आया डंडा। अंग्रेज बदमाश, मुझे कपटी कहता, तू कपटी, तेरा बाप कपटी, तू सारे अंग्रेज कपटी हो साले बदमाश। वो भागा, सोचा मैंने क्या बोल दिया मुझे, और धुम धुमा के अंग्रेज का बच्चा वहां से भागा। कपट अच्छा है नहीं। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न पावा। भगवान को पाने की यही क्वालिफिकेशन है, बाहर भीतर से एक बनना है, अंदर से शुद्ध बनना है। लगे लोगों मन बनाओ को मैंने शुद्धि करनी है, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। लगे रहो भगवान से प्रार्थना करो, ऐसे संतों से प्रार्थना करो, परंपरा से प्रार्थना करो। तो क्यों तंग कर रहा है अपने पिताजी, तुम्हारा बेटा ही है, तंग क्यों कर रहा है, सुनने क्यों नहीं देता तू, बैठ जा आराम से बैठ। उधर बाप का ध्यान इधर लगा, उधर बेटा कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कान में फुसफुस करता है, क्या कह रहा है, ये घर जाना है, जाना तो जा, पर तुम बाप को क्यों ले जा रहे थे, अभी शक्ल नहीं दिखा रहा मेरे को, चुप गया। ये क्या हो गया, क्या हुआ, तोड़ दिया कुछ। तो भगवान मिलेंगे निर्मल मन से, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न, अच्छे बनो, ये प्रभुपाद की शिक्षा है। हमें चार दोष हैं, पहला दोष हम गलती करते हैं, दूसरा दोष है इंद्रिय अपूर्ण है, तीसरा दोष है धोखा देने की आदत, चौथा दोष है कि हम अविद्या में हैं। तो धोखा देने की आदत बनी रहती है लोगों के सामने, ये हम उपस्थित करना चाहते हैं मैं बड़ा महान हूं, अंदर से चाहे मेरे गंध भरा पड़ा है, ये तो वो धोखा। प्रभुपाद के शब्दों में प्रभुपाद कहते थे, कृष्ण कहते हैं, अमंग द चीट्स आई एम द ग्रेटेस्ट चीट, धोखा देने वालों में सबसे बड़ा धोखा देने वाला। इसलिए ये भावना निकालो सारी अंदर से, क्योंकि अभी तो कल बेचारी 21 साल की लड़की थी, चली गई, माँ बड़ी रो रही थी, किसकी गारंटी है, किसी की गारंटी है यहाँ पर कि जो अभी जिएगा और लंबी गारंटी है किसी के पास, बोलो, बोलते नहीं है, गारंटी है तो मेरे को भी चाहिए गारंटी, किसी के पास तो दे देना मेरे को भी, बोलता कोई नहीं, हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, कभी भी जीवन का अंत हो सकता है। तो हमने भगवत प्राप्ति करने के लिए अपने अंतरात्म को पवित्र करना है, और वृंदावन दास ठाकुर बहुत दयालु हैं, उनकी कृपा से हम जो हैं अपने अंतरात्मा को पवित्र कर सकते हैं। ये जो भजन मैंने सुनाया आपको, ये अनिलो प्रेम धन, जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए, मेरे शिला स्वरूप दामोदर शिला रूप को स्वामी कहाँ है, शिला सनातन कहाँ है, पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ है, मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है, और शिला कृष्णनाथ कविराज कहाँ है, महान नर्तक शिशि गौरांग महाप्रभु एक कहाँ चले गए, मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहां पाऊंगा। श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। तो प्यारे बद्धुआ माताओं, आज बहुत महान शिला वृंदावन दास ठाकुर प्रकट हुए थे हम लोगों के कल्याण के लिए, जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा। आओ उनका जीवन थोड़ा हम पढ़ते हैं। वेद व्यासो या एवासित दासो वृंदावनो अधुना सखाया कुसमा बीड़ा कार्य तस्तम सगा विशद। श्री कृष्ण द्वापयान व्यास, वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया है। श्री व्यासात भिन्न विग्रह शिला वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य लीला वर्णित हुई है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के ग्रंथ का नाम पहले श्री चैतन्य मंगल था। श्री लोचन दास ठाकुर जी ने अपने द्वारा रचित ग्रंथ का नाम भी चैतन्य मंगल रखा था, इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम परिवर्तित करके श्री चैतन्य भागवत रखा गया। शिला वृंदावन दास ठाकुर जी 1429 शिकाब्दा वैशाखी कृष्ण द्वादशी के दिन मामगाछी किसी दो के अनुसार कुमारहट में आविर्भूत हुए। इनके पिता का नाम श्री वैकुंठनाथ विप्र एवं माता का नाम श्रीमती नारायणी देवी था। बोलो नारायणी माता की। श्रीमती नारायणी देवी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त श्रीवास पंडित के बड़े भाई नलिन पंडित की कन्या थी। इनके संबंध में श्री कर्णपुर ने श्री गौर गणोदेश दीपिका ग्रंथ में लिखा है कि अंबिकायाः स्वसा यासिन नामनि शिला किलंबिका कृष्णोचिष्ट प्रभुन जाना स्वयं नारायणी मतः। ब्रज लीला में कृष्ण की स्तन धात्री अंबिका की बहन किलंबिका, जो हमेशा श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करती थी, ही चैतन्य लीला में नारायणी देवी के रूप में चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्री बनी। श्रीमन महाप्रभु ने महाभाव प्रकाश लीला के समय श्रीवास आंगन में जब नारायणी को कृष्ण नाम उच्चारण करने के लिए कहा, उस समय नारायणी 4 वर्ष की बच्ची थी, तो वह कृष्ण कृष्ण उच्चारण करती हुई कृष्ण प्रेम में पागल होकर नेत्रों से अश्रु धारा बहाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। श्रीवास पंडित जी की पत्नी मालिनी देवी ब्रज लीला की स्तनदात्री अंबिका थी। श्री वृंदावन दास जी का जन्म मामगाछी किसी के मत के में कुमारहट ग्राम में होने पर भी वे मंत्रेश्वर थाना के अंतर्गत देनूर नामक ग्राम में रहते थे, इसलिए इनका श्रीपाठ भजन स्थान देनूर ग्राम में है। श्री वृंदावन दास ठाकुर बाल्यावस्था में अपनी माता के साथ मामगाछी गांव में रहते थे। पितृ वियोग होने से श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की माता श्रीमती नारायणी देवी श्रीवास पंडित जी के घर आ गई। वहां पर उन्होंने महाप्रभु जी की विशेष कृपा लाभ की। इनके पूर्वज श्री हट स्थान के रहने वाले थे। वृंदावन दास ठाकुर जी ने परम पतित पावन नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त की थी, इसलिए इन्हें श्रीमन नित्यानंद प्रभु का मंत्र शिष्य भी कहते हैं। श्री नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास श्री चैतन्य लीलाए ते हो हयन आदि व्यास शिवा जी की पत्नी मालिनी देवी के पिताजी का घर मामगाछी ग्राम में था। इस ग्राम में अभी भी ठाकुर वृंदावन दास जी के द्वारा सेवित श्री गौर नित्यानंद जी की श्री मूर्ति की पूजा हो रही है। आज भी जिन विग्रहों की इन्होंने पूजा की थी वो आज भी उनकी पूजा हो रही है। इन्होंने सन 1457 शिकाब्द में श्री चैतन्य भागवत नामक एक अतुलनीय ग्रंथ की रचना की। श्री चैतन्य चरितामृत में शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने भी श्री वृंदावन दास ठाकुर के बारे में इस प्रकार लिखा है। वृंदावन दास नारायण रनंदन चैतन्य मंगल जे हो करीला रचन भागवते कृष्ण लीला वर्णिला भेद व्यास चैतन्य लीला एते व्यास वृंदावन दास कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास चैतन्य लीला रा व्यास वृंदावन दास वृंदावन दास केले चैतन्य मंगल यहारा श्रवण नाशे सर्व अमंगल चैतन्य निताई जाते जानिए महिमा याते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांते रे सीमा भागवते यत भक्ति सिद्धांते रा सार लिखिया छिन इहा जानी करिया उधार चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी यवन से महावैष्णव हय तत्न। चैतन्य मंगल की रचना वृंदावन दास ठाकुर ने की थी, पर उसका नाम पड़ा चैतन्य भागवत, क्योंकि लोचनदास ठाकुर जी ने चैतन्य मंगल लिखा था। यहाँ क्या कहा है, चैतन्य मंगल जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा थी, अगर पाषंडी यवन जो मुसलमान भी अगर इसको सुनते हैं सही महावैष्णव है तत्क्षण तुरंत वो वैष्णव बन जाते हैं, ऐसा लिख रहे हैं कृष्णदास कविराज महाराज। मनुष्य रचिते नारे इचे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे भक्त श्री चैतन्य वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार इचे ग्रंथ करी ते गो तारीला संसार नारायणी चैतन्य उचिष्ट भोजन तार गर्भे जन्मिला तास वृंदावन तार की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन यहारा शवने शुद्ध केल त्रिभुवन। श्री नित्यानंद प्रभु जी की लीला वर्णन करने में ही खो जाने के कारण शिला वृंदावन दास ठाकुर जी ने किसी किसी लीला का सूत्र रूप में ही वर्णन किया है। लीलाओं में खो जाते तो ज्यादा वर्णन नहीं किया। विशेषता श्रीमन महाप्रभु जी की अंतिम लीला, क्योंकि भावुक हो जाते थे, असंपूर्ण रह गई असंपूर्ण शिला वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा जो सूत्र रूप में वर्णित है और श्रीमन महाप्रभु जी की असंपूर्ण अंतिम लीला को ही शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में विस्तार रूप से वर्णन किया है। श्री चैतन्य लीला राव्यास दास वृंदावन मधुर करिया लीला करीला रचन ग्रंथ विस्तार भय चाणीला ये स्थाने से स्थाने के चुप करी व्याखाने। शिला वृंदावन दास ठाकुर जी ने श्रीमन महाप्रभु जी की आदि लीला का अध्ययन लीला पौगंध लीला श्रीमन महाप्रभु जी की काजी दलन लीला नीलाद्री गमन लीला पुरी में जल क्रीड़ा इत्यादि लीलाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया है, सारी लीलाओं का वर्णन नहीं हुआ है। तो प्यारे बंधुओं माताओं, समय समाप्त हो चुका है, तो 9 बजे तक समय समाप्त हो चुका है। तो किसी को कोई प्रश्न हो तो मैं एक आध प्रश्न ले लें। प्रश्न की अनुमति है रुक्मणी जी की, रुक्मणी कृष्ण जी कहते हैं एक आध प्रश्न ले सकते हैं, तो हाथ खड़ा करके आप पूछिए। अंदर बाहर दायां बायां किसी को कोई प्रश्न नहीं, हाँ बोलिए।
हरे कृष्णा महाराज।
हरे कृष्णा
महाराज, आपने बताया कि जो भक्त होता है वो भगवान उनके लिए सुलभ है जो बहुत मन से अंदर से और बाहर से साफ है, लेकिन जो आजकल का समाज है वो बहुत कपटी और चालाक और दूषणों से भरा हुआ है। जब एक साधक भक्ति करते हुए कहीं बाहर जाता है तो उसको धोखा मिलता है, तो उस साधक के लिए क्या प्रयास होना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए, लड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको?
जैसी देश काल परिस्थिति है वैसा करना चाहिए, एक ही बात सब जगह लागू नहीं होगी। वी हैव टू कीप इन माइंड टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। वैसे प्रायः भक्तों के साथ धोखा होता है, क्यों भक्त सोचता है सभी भक्त सब भक्त होते नहीं, सब तो ठगते हैं, तो धोखा होता है। वो कैसा समय है उसके अनुसार वो देखना पड़ता है।
लेकिन फिर बाहर से आलोचना मिलती है,
है?
बाहर से आलोचना भी मिलती है कि आप तो अभी भक्ति कर रहे हैं और आप ऐसा कर रहे हैं,
क्या कर रहे हैं?
मतलब आप अगर हम कुछ बोलते हैं उल्टा या कुछ हम ऐसा कोई रिएक्शन देते हैं उनको तो हमें उल्टा कुछ सुनने को मिलता है फिर कि आप तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन आपको ये धोखा नहीं देना चाहिए।
नहीं तो मैं समझा नहीं प्रश्न क्या, आप धोखा देते हैं किसी?
नहीं, हम धोखा नहीं दे रहे, हमें धोखा मिल रहा है।
नहीं, आपने बोला धोखा नहीं देना चाहिए।
नहीं, धोखा नहीं मतलब हमें वो धोखा देते हैं, जैसे हमसे कोई व्यापार किया और हमें उन्होंने धोखा दिया व्यापार में।
देखो आप
अगर हम उनको ट्रीट ऐसा करेंगे तो फिर वो हमें उलझना देते हैं महाराज।
देखो आप ऐसा करना चाहिए, असली व्यापार करना चाहिए, भक्ति का व्यापार करो और दूसरा व्यापार छोड़ो जिसमें धोखेबाजी है, ये व्यापार करो। नकली व्यापार के पीछे क्यों लगे हो आप, उसमें से धोखा ही धोखा है। इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, कोई लाट साहब का साला चोर, इस दुनिया में कोई चोरी करे खजाने की, कोई आने या दो आने की, है सब चोर इकट्ठे हुए। तो आप असली व्यापार क्यों नहीं करते, क्यों नकली व्यापार में पड़े हो जहां आपसे धोखे हो रहे हैं, लोग क्रिटिसाइज आपको कर रहे हैं, क्यों आप उसमें पड़े हो, क्यों नहीं छोड़ते आप उसको, जानते हुए क्यों जान बने हो, बोलो हाँ? बोलती बंद हो गई, बोलो।
प्रयास करते हैं महाराज, लेकिन
प्रयास क्या करते हैं, आ जाओ। भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यजे माम एकम शरणम परित्यजे अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मां सारे धर्म सारे कर्तव्य भूल करके तू मेरी एक ही शरण में आ जा। ये देखो रुक्मणी ने कैसा हाथ पहनाया, मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम डरो माने। दिया तुमको रुक्मणी ने था ना ये, हाँ? तेरी चलाकी है फिर इसको वापस करवाई फिर ये, हाँ बोलो।
मेरा प्रश्न ये था महाराज कि
तो सर क्या या अभी भी है,
अभी क्लियर नहीं हुआ महाराज, अभी क्लियर नहीं हुआ मेरे को,
हाँ बोलो।
तो महाराज यही है कि आपने कहा कि अंदर से बाहर से हम एक जैसा होना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं,
हाँ।
तो लेकिन उस
वो अच्छे वातावरण में हो पाएंगे, मैं प्रश्न आपके समझ गया, आप उत्तर नहीं समझ रहे। अगर आप एक दूषित वातावरण में रहोगे या धोखेबाज लोग हैं वहां कैसे आप अंदर बाहर से एक हो सकते हो? जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा करे संग वैसा बने अंग, जैसा पिए पानी वैसे बने वाणी, तो उस संगत में आप ठीक नहीं हो सकते। इसलिए मैंने आपको उत्तर दिया, लेकिन आप समझना नहीं चाहते। भगवान का सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, भक्तों के संग में रहो, वो समस्या नहीं होगी। लेकिन आप उसमें अटैच हो, उससे छोड़ना नहीं चाहते, आप उसको कैसे कल्याण होगा? सब
ठीक है,
ठीक है,
थैंक यू महाराज।
हाँ समझ आई ना, कब आ रहे हो मेरे इधर आप? हाँ कब तक? हाँ आज से ही, शुभ आशीष शीघ्रम, शुभ काम को तुरंत करो। कल करंती आज कर, आज करंती अब, पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। शुभ काम रावण कहता है कल करना आज करो, आज करना अब करो, पल में प्रलय हो जाएगी। रावण कहता है मेरा सर्वनाश हो गया। बोलो
महाराज जी, जी आप कहते सरल हृदय के होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है महाराज जी?
इसका मतलब सरल हृदय का होना चाहिए। इसका क्या मतलब, इसको मतलब समझाओ भैया। सरल हृदय का मतलब सरल होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए, बाहर से और अंदर से एक ही होना चाहिए, यानी बाहर से कुछ अंदर से कुछ, ये है सरल हृदय। आया समझ नहीं? आया नहीं? नहीं आया? हैं? सरल का मतलब अंदर बुराइयां नहीं होनी चाहिए, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट, ये बुराइयां नहीं होनी चाहिए।
ये सब तो ऑलरेडी होता,
ऑलरेडी होता है, तो उसको निकालना है ना, होता तो है, उसको निकालना है भक्ति करके, सिमरन करके, सत्संग के माध्यम से। भाई ये मेरे अंदर जो गंदगी है उसको निकालना है। आप प्रार्थना करोगे गुरु गौरांग नित्यानंद राधा कृष्ण से, तो ये धीरे धीरे निकल जाएगा। जैसे जगाई मदाई को सरल करते थे, मदाई कितना सरल हो गया गौर नेता की कृपा से, शुद्ध भक्त बन गया। ठीक है, बराबर,
ठीक
है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को नहीं है? हाँ एक और निकला है, बोलो।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा
प्रभु जी, जब आपका कल नाम सुना था कि नव योगेंद्र प्रभु जी आएंगे, महाराज जी आएंगे, सॉरी, तो मैंने सोचा कि कोई 20 साल के कोई यंग प्रभु जी है महाराज जी का।
लेकिन 20 साल के,
20 साल के यंग महाराज जी है कोई, 20 इयर्स के। लेकिन आप तो उससे भी ज्यादा यंग 16 साल के महाराज जी। हरि बोल।
मैंने सोचा कि तुम्हें बुढ़ा बनाएगा, जवान बना दिया। चलो अच्छा, धन्यवाद। प्रश्न बात यही प्रश्न। चलो और कोई प्रश्न किसी को? हाँ बोलिए। हरे कृष्णा जी, इनको माइक दे दो।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण
बाबूजी। महाराज हम जो है भगवान भोलेनाथ जी,
ऐसे ऐसे
भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं।
पर मैं भाऊ नहीं हूँ, भाऊ जी बोल रहे ना। और जैसे
महाराज,
जैसे वो था ना, वो दिखाया है तुम्हें, उसने दिखाया तो वैसे कौन हो तुम? कहते मैंने सुना कि अफ्रीका से एक पागल डॉक्टर आया है। कौन हो तुम? कहते लोग मुझे कहते हैं कि मैं पागल हूं। कौन कहता है? कौन कहता है? लोग कहते हैं मैं बदला बदला लगता हूं। आप बताओ मंत्री जी। कहते मैं मंत्री नहीं हूं, मैं डॉक्टर हूं। तो आपने बाबूजी बना दिया, बाबूजी थोड़ा हूं।
हम भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं, किताब पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि मोक्ष की प्राप्ति जो है भोलेनाथ जी के से होती है।
किससे?
भोलेनाथ जी की पूजा से जो होती है। जैसे मोक्ष कहाँ मिल सकता है, मतलब जो है?
देखो भोलेनाथ जी क्या कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जटरे शायनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पागी मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूर्मते। ये भोलेनाथ कह रहे हैं, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तेरा जन्म हो रहा है, बार बार तू माँ के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है, ऐसा इस संसार का दुस्तर प्रभाव है। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। मुक्ति के दाता केवल कृष्ण है और कोई नहीं है, ये महादेव कह रहे हैं। रावण किसका भक्त था? महादेव जी का था ना। तो जब राम भगवान ने रावण को मारना चाहा, राम कृष्ण में कोई भेद नहीं, तब सती माता ने कहा भोलेनाथ को कि आपका भक्त आपको पुकार रहा, उसकी मदद करो। तब भोलेनाथ कहते हैं उसकी अभी कोई मदद नहीं कर सकता, कहते वो तो आपका भक्त था, वो मेरा भक्त तो था, अब वो राम का द्रोही बन गया है। राम द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे स्वप्ने नहीं भावा। जब राम जी ने रावण को मारना चाहा तो शंकर भगवान नहीं जा सके, मुक्ति केवल कृष्ण दे सकते हैं। और कोई
महाराज रावण के कर्म ऐसे थे जो उसके कर्म के उसको दंड मिला। जब रावण के कर्म जो गलत थे उससे उसको राम जी ने मारा, पर राम जी ने रावण को मारने से पहले शिव जी की आराधना करी थी। रामेश्वरम जो बना हुआ है उसके बारे में
जरूर की थी। उसके बारे में सुनना चाहते हो, ध्यान से सुनना, समझ में आए तो पर मार्ग पे हो जाना। क्या नाम तुम्हारा?
नवीन शर्मा।
देखो जब सुदामा जी कृष्ण भगवान को मिलने गए थे नहीं, सुनना क्या है ना, द्वारका में गए थे, भगवान ने अपने सिंहासन पे बिठाया था सुदामा जी को, चरण धोए थे, चरणामृत लिया था, पूजा की थी, क्या मतलब हुआ इसका? अभी सुदामा जी भगवान बन गए और वो कृष्ण भगवान सेवक बन गए। अरे भगवान अपने भक्तों को पूछते हैं, शंकर को पूजा तो फिर क्या हो गया, वो भक्त है उनके, अनेकों भक्तों को पूजा भगवान ने, आपके प्रश्न का उत्तर मिला नहीं? मिला नहीं मिला? भगवान ने राम जी ने जरूर पूजा की थी शंकर भगवान की, वो अपने भक्तों के वो सेवक बन जाते हैं, अनेकों उदाहरण है। एक थोड़ा भक्ति मुक्ति केवल कृष्ण दे सकते। जब युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया था उस समय सभी को सेवाएं दी गई। उस समय कृष्ण भगवान कहते हैं युधिष्ठिर जी को कि भैया मेरी क्या सेवा है? युधिष्ठिर जी हंसने लगे, आपकी सेवा सबको आशीर्वाद देना, कहीं अपनी सेवा खुद चुनेंगे। युधिष्ठिर जी चुप रहे तो कृष्ण भगवान ने कहा यहाँ जो ब्राह्मण संत महात्मा भोजन करेंगे उनकी झूठी पत्नियां झूठ हम उठाएंगे। पढ़ रखा सुन रखा नहीं है तो क्या वो सब भगवान बन के जिनकी झूठ भगवान ने उठाई? अरे भगवान की कृपा है, दया है।
हरे कृष्ण।
आज के बाद कृष्ण भक्ति, शंकर भगवान से कहना मुझे कृष्ण भक्ति दो, ठीक है? नवीन शर्मा समझा ही नहीं अभी। कितनी महामंत्र की कितनी माला जपोगे रोज?
जितने कहोगे उतने जप लेंगे महाराज।
16, वेरी गुड। और कोई प्रश्न किसी को?
धन्यवाद महाराज, आपने बहुत बहुत उत्साहवर्धक कक्षा दिया महाराज, धन्यवाद आपका।
मुझे ऐसा लगा अनुमान नहीं है, आपने अनुमान नहीं है, कुछ समझ नहीं आया क्या बोल रहा है। बैठ जाओ वहां से सब लोग। क्या कह रहे हो, जितना बोलो।
धन्यवाद महाराज, आपने बहुत उत्साहवर्धक कक्षा दिया,
आपका भी धन्यवाद।
महाराज आपने बताया कि भक्त को हमेशा आशावंद रहना चाहिए, रूप गोस्वामी जी बताते हैं, तो महाराज कभी कभी जैसे जीवन में स्थितियां आती हैं जिसकी वजह से आशा बंद रह पाने में बड़ी समस्या आती है, आशा नहीं जुड़ा पाते, तो उन स्थितियों में कैसे हमें आशा बंद
प्रयास करने पर आशा बंद रहने का? यही तो है, कहा है कि वो बड़ा सुंदर ये प्रभुपाद ने दोहा लिखा भागवत में, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख का एक होए। हर हालत में याद रखना है, जब कोई जैसी परिस्थिति आती है फिर भी भगवान का सिमरन करना है, सुख में भी दुख में भी परिस्थितियां बदलती रहेंगी, ये सब हमारे कर्मों का खेल है। थोड़ा इधर तुम इधर हो भैया, इसको मैं इधर कर रहा हूं। तो परिस्थितियां बदलती रहेंगी लेकिन हमें सीखना है हर हालत में, जैसे भगवान ने भी गीता में कहा ना कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या तांत्रिक सव भारता। हे कुंती पुत्र, ये सुख दुख संसार के ऐसे हैं जैसे गर्मी और सर्दी के ऋतु, ये आते हैं रहते हैं चले जाते हैं, इनको सहन करना सीखना चाहिए। अगर दूसरी परिस्थिति आती है तो आप आशा बंद नहीं रह सकते, उसमें प्रयास करना, ठीक है? हरे कृष्णा।
धन्यवाद
हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्णा।
हमें ऐसा क्या महसूस होना चाहिए कि हमें लगे कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं?
हाँ, ये प्रश्न एक प्रभुपाद जी को एक भक्त ने किया था कि प्रभुपाद हम मंगल आरती जाते हैं, जप करते हैं, सेवा करते हैं, हमें कैसे लगे कि हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं? यही है ना तेरा प्रश्न? बड़ा अच्छा प्रश्न है, प्रभुपाद जी को किया हो, उसने भी यही किया, इस बालक ने। क्या नाम है तेरा? शालिग्राम दास। शालिग्राम दास ब्रह्मचारी जो कभी नहीं बनेगा अधिकारी, बनेगा तो वो जल्दी बनेगा गौर ब्रह्मचारी। दो बातें कही है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद ने कहा एक है काम, दूसरा ईर्षा। ये या तो कम हो रहे हैं या समाप्त हो गए। समाप्त होने का बड़ी दूर की बात है। काम और ईर्षा अगर ये कम होना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब अध्यात्मिक पथ में हम उन्नति कर रहे हैं। समझाई? अगर ये नहीं हो रहे कम, इसका मतलब स्टैग्नेंट है, हम उन्नति नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न इधर भी है।
हरी बोल महाराज।
हरी बोल, हरी बोल
महाराज जी। मैं गीता का पाठ करता हूँ।
हाँ जी,
लेकिन मेरे को संस्कृत नहीं आती, जो हिंदी में लिखा हुआ है गीता में, मैं उसी का पाठ करता हूँ बस। तो क्या वो मेरी भक्ति में जुड़ता है?
वो आपके
मेरी भक्ति में लगता है क्या? जो गीता
कहा है, तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है, तुलसी अपने राम को रीज भजो जा खींच, यूं खेती माँ नाखिए उल्टा सीधा बीज। जैसे तैसे भजन करो भगवान का, जैसे बीज। आप जब माला कितनी करते हैं? आप
दो माला सुबह, दो माला शाम को,
तो बाकी आपका बाप करेगा?
महाराज जी मैं
16 माला चाहिए रोज।
अभी तक
समझाई नहीं, बोलो 16 माला करो या नहीं?
बिल्कुल करूंगा।
हाँ,
अभी good. मुझे दीक्षा नहीं दी किसी ने।
हैं?
दीक्षा नहीं दी किसी ने।
क्या दीक्षा? 16 माला करो तो दीक्षा होगी ना। 16 माला के बिना दीक्षा कैसे हो जाएगी आपकी?
ठीक है,
16 माला करो फिर दीक्षा होगी। 4 नियमों का पालन करो फिर दीक्षा होगी। नियम का पालन करो नहीं, 2 सुबह 2 शाम है, और मेरी दीक्षा नहीं हुई, दीक्षा कैसे हो जाएगी? 16 माला करो। और वैसे जप मैंने कई बार समझाता हूँ, फिर भी बोल देता हूँ। शाम को ही बोला था, इतना जप कर कि हद कर दे कि जमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। आप सरल आया, बोला क्यों नहीं आपने मुंह से? खाता बंद नहीं करवाना अपना? नहीं करवाना?
करवाना ही। मैं जो कहना चाह रहा हूँ,
हाँ बोलो।
मैं LIC का एजेंट हूँ। मैं LIC का एजेंट हूँ ना।
तो मैं अभी हमारे एजेंट बन जाओ।
मैं चलते नहीं, जैसे मैं चलता फिरता रहता हूँ, मैं गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे चलता हूँ, चलते चलते भी मैं अपना वो चलता रहता हूँ, वो भी चलता रहता
हूँ। कुछ करो हर समय, किसका बच्चा नीचे पड़ा उसको मैडम करते रहो, नाम जपते रहो। ठीक है
महाराज जी, आपका
अभी आप हम अपना एजेंट बना लेंगे। बनोगे? नहीं
बिल्कुल।
क्या नाम आपका?
देवेंद्र
जी।
देवेंद्र,
देवेंद्र प्रताप सिंह।
देवेंद्र कुमार शर्मा।
देवेंद्र,
देवेंद्र कुमार शर्मा।
कुमार शर्मा। और का प्रश्न किसी को? अभी 16 माला में चाहिए रोज है।
ठीक
है, और प्रश्न किसी को? कोई नहीं, साहब मेरे पीछे बोलो अभी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा,
कृष्णा
हरे हरे,
हरे
हरे,
हरे राम,
हरे राम,
हरे राम,
राम राम,
राम राम,
हरे हरे,
हरे हरे।
जय श्री कृष्ण,
जय श्री कृष्ण,
जय चैतन्य,
प्रभु
नित्यानंद,
श्री अद्वैत
गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त,
गौर भक्त
वृंदा, नमः ओम। विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले
भूतले
क्षेमते
क्षेमते
भक्ति वेदांत स्वामी
स्वामी
इति नामने
नमस्ते
नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी
गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे बोलो पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले जगत गुरु श्री प्रभुपाद की बोलो श्री श्री राधिका रमण भगवान की बोलो श्री श्री कृष्ण बलराम की बोलो श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की नित्य गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण हारमोनियम किसका है मंदिर का तो मंदिर डोनेशन भी दे दान भी दे सकता है किसी को नहीं हैं आया तो डोनेशन दे दो आगे कहते दान में चीज आई हुई देना बड़ा पुण्य है हाँ नहीं तो वो गायें थी ना ये हारमोनियम है तो वैसे ये थोड़ा सा हार है फिर भी काम चला लेंगे हम इससे ठीक है ले जाए पक्का धन्यवाद धन्यवाद यहाँ दिल्ली में मिलता है हैं नहीं मिलता है दिल्ली में मेरे पालन कंपनी दिल्ली में आ गई
दिल्ली में सब कुछ मिलता है
नहीं एक सब कुछ मिलता है एक हारमोनियम मिलता है लेके आओ हमारे लिए हैं वेरी गुड देखो हमारे रुक्मणी कृष्ण जी थोड़े कंजूसी कर रहे थे तो भगवान ने एक और खड़ा कर दिया भक्तों दोनों हाथ पहले एक हाथ किया दोनों हाथ पक्का लाऊंगा मैं कब कब तक मिलेगा वेरी गुड गले में डालो इसको गले में नहीं पर ऐसा चाहिए मेरे को पालन कंपनी का हाँ वेरी गुड अरे क्योंकि रुक्मणी की अंदर से मानी नहीं थी ऊपर से तो कह रहा था बेचारा वही ना बाहर और भीतर और ऊपर से तो कह रहा था इसने कोशिश की टरकाने की कि दान में आया कहते दे दे ये और साथी उसका लगा होता वकील साथ में था वकील कहता है तुम्हारा दान में आया गाय के उदाहरण दे रहा मैंने वो गाय दी तो उसकी मर्जी नहीं थी तो आपने पालन कंपनी का ला के देना ठीक है हाँ ये इनको पता है बता दी हाँ ठीक है
हरे कृष्ण
ठीक है
हरे नवयुगेंद्र स्वामी महाराज की गौर प्रेमानंदे